This podcast is sponsored by Monarch Money. Are you saving to reach your financial goals? Reaching those goals isn't just about getting more money, but by managing what you have. And the best way to manage your money? Monarch Money. Monarch Money is a new kind of finance app that's intuitive, powerful, ad-free, and takes the headaches out of budgeting. Try it free when you go to monarchmoney.com/podcast. Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals, and track your progress toward them. See why Mint users are turning to Monarch Money and loving it, and why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com/podcast. That's monarchmoney.com/podcast for your free trial. monarchmoney.com/podcast.
आप सुन रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय HD स्मार्टकास्ट।
नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें।
अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कब आएगा फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने बता दी तारीख। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार यानी 10 मई को आदेश पारित कर सकता है। मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश अंतरिम जमानत पर सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर भी उसी दिन फैसला दिया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह नहीं चाहती कि यदि केजरीवाल को चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया तो वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करे। इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी का कहना था कि केजरीवाल अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, बशर्ते कि दिल्ली के उपराज्यपाल सिर्फ इसलिए फैसलों को खारिज न कर दें क्योंकि फाइलों पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल से सरकार चलाने के वास्ते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए उपयुक्त इंतजाम करने की अपील करते हुए एक वकील द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका को बुधवार को 1,00,000 रुपए के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को केजरीवाल के इस्तीफे के लिए अनुचित दबाव डालने से रोकने की भी मांग की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अगुवाई वाली एक पीठ ने कहा कि चूंकि आप नेता अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध पहले ही उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं, ऐसे में न्यायिक हिरासत में उन्हें कोई सुविधा प्रदान करने के संबंध में किसी आदेश की अपील न की जाए। सैम पित्रोदा के डबल झटके से बैकफुट पर कांग्रेस, नस्लवादी टिप्पणी से किया किनारा। मौजूदा लोकसभा चुनावों के बीच मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपने ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा के बयान से दूसरी बार मुश्किलों में घिर गई है। पित्रोदा के बयान पर विवाद बढ़ता देख कांग्रेस ने उनकी कथित नस्लवादी टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया है। पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, सैम पित्रोदा ने पॉडकास्ट में भारत की विविधता को दर्शाने के लिए जो उदाहरण दिए हैं, वे सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उदाहरणों से खुद को पूरी तरह से अलग करती है। सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता का उदाहरण देते हुए पूर्वोत्तर के लोगों की चीनी नागरिकों के समान, पश्चिम के लोगों को अरब लोगों के समान और दक्षिण भारत के लोगों को अफ्रीकी लोगों के समान बताया था। भाजपा नेताओं ने चुनावी माहौल में पित्रोदा की टिप्पणी की तीखी आलोचना की है और इसे अस्वीकार्य और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। दरअसल द स्टेट्समैन के साथ एक साक्षात्कार में सैम पित्रोदा ने हाल ही में एक लोकतांत्रिक उदाहरण के रूप में भारत की स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा, हम भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को एक साथ रख सकते हैं, जहां पूर्व के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग शायद गोरे जैसे दिखते हैं और दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पित्रोदा की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम इस नस्लवादी मानसिकता को स्वीकार नहीं करेंगे। पीएम ने कहा, जब मुझ पर अपशब्द कहे गए तो मैंने उसे बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब हमारे देश के लोगों को अपशब्द कहे जा रहे हैं। अगले 5 दिनों तक यूपी समेत इन राज्यों में होगी बारिश। गर्मी के बीच आ गई खुशखबरी, उत्तर प्रदेश समेत देश भर के कई राज्यों में बारिश आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। इससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में 8 से 10 मई के बीच हीटवेव का नया दौर आने वाला है, जबकि दक्षिण के राज्यों से आज से हीटवेव चली जाएगी। पूर्वी और दक्षिण भारत में 11 मई तक कई राज्यों में बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो तमिलनाडु तेलंगाना में हीटवेव की स्थिति देखी गई। तमिलनाडु तटीय आंध्र प्रदेश तेलंगाना रायलसीमा में भारी बारिश हुई। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश विदर्भ नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश में ओले गिरे। बीते दिन सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया, जहां 45.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल सिक्किम में मई के 8 से 11, बिहार झारखंड ओडिशा में मई के 8 से 12 के बीच हल्की से मध्यम बारिश होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ में मई के 8 से 12 के बीच बारिश आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा में अगले 7 दिनों के दौरान बारिश होगी। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश विदर्भ के इलाकों में 8 और 9 मई को ओले गिरने का अनुमान है। दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल तटीय आंध्र प्रदेश यनम रायलसीमा तेलंगाना में मई के 8 से 12 के बीच हल्की से मध्यम बरसात होने वाली है। आंधी तूफान और बिजली कड़कने की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में कल 9 मई एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस दस्तक देने जा रहा है, जिसकी वजह से कई जगह का मौसम बदल जाएगा। CSK का साथ छोड़ने वाले मुस्तफिजुर रहमान की बांग्लादेश T20 स्क्वाड में वापसी, शाकिब अल हसन भी लौटे। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इन दिनों बांग्लादेश के दौरे पर है। ICC T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के तहत बांग्लादेश 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज की मेजबानी कर रहा है। पहले 3 T20 इंटरनेशनल मैच जीतकर बांग्लादेश पहले ही सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुका है। आखिरी 2 T20 इंटरनेशनल मैचों के लिए बांग्लादेश ने 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया है। शाकिब अल हसन की व्हाइट बॉल क्रिकेट में लंबे समय बाद वापसी हो रही है। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स CSK की ओर से इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 में हिस्सा ले रहे मुस्तफिजुर रहमान की भी स्क्वाड में वापसी हुई है। शाकिब अल हसन ICC वर्ल्ड कप 2023 के दौरान आंख में दिक्कत से परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में हिस्सा नहीं लिया था। शाकिब अल हसन को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले 3 T20 इंटरनेशनल मैचों के लिए स्क्वाड में नहीं चुना गया था, क्योंकि उन्होंने खुद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से ब्रेक के लिए कहा था। IPL से लौटने के बाद मुस्तफिजुर रहमान को पहले 3 मैचों से आराम दिया गया था। इजराइल को बीच राह में छोड़ रहा अमेरिका, हथियारों की सप्लाई रोकी, राफा पर अटैक कर फंसे नेतन्याहू। दक्षिणी गाजा के राफा शहर में इजरायली सेना ने आक्रमण शुरू कर दिया है। एक दिन पहले इजरायल की एक टैंक ब्रिगेड ने मंगलवार को गाजा की महत्वपूर्ण राफा सीमा पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। अपने करीबी सहयोगियों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए इजरायल दक्षिणी शहर में घुस गया। अब इजरायल को इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। दरअसल इजरायल का सबसे करीबी दोस्त अमेरिका भी अपने हाथ पीछे खींच रहा है। अमेरिका ने इजरायल को पहले ही चेतावनी दी थी कि वह राफा पर हमला न करे, लेकिन इजरायल ने उसकी नहीं सुनी। अब अमेरिका ने इजरायल को भेजी जाने वाली बम की खेप रोक दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि खेप में 2000 पाउंड वजन के 1800 बम और 500 पाउंड वजनी 1700 बम भेजे जाने थे। अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटकों का इस्तेमाल घनी आबादी वाले क्षेत्र में कैसे किया जा सकता है। चरमपंथी हमास द्वारा पिछले साल 7 अक्टूबर को इजरायल पर घातक हमला किए जाने के जवाब में इजरायल ने गाजा पट्टी पर आक्रमण शुरू कर दिया था, जिसके बाद से 10 लाख से अधिक नागरिकों ने रफा में शरण ली हुई है।
आप सुन रहे थे हिंदुस्तान का डेली न्यूज रैप, जो HT स्मार्टकास्ट की एक बीटा संस्करण का हिस्सा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे @HT Smartcast या podcasts@hindustantimes.com पर ईमेल के द्वारा सुझाव दे सकते हैं।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HT Smartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।